आईएएस की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज घटना के रूप में, समाचार के रूप में कोई ऐसी विशेष बात नहीं है जो मुझे लगे कि आप सब तक मैं पहुंचाऊं, तो मैं शुरुआत ही कर रहा हूं अखबार के एक आर्टिकल से जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। दैनिक भास्कर में यह आर्टिकल छपा है और मैं चाहूंगा कि आप इस आर्टिकल को बहुत ध्यान से पढ़ें और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगें उन्हें नोट भी कर लें। यह आर्टिकल है, जलवायु परिवर्तन के लिए कंपनियां अब वास्तविक समाधान सोचें। ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल मुझे लग रहा है कि देखिए जलवायु परिवर्तन को कैसे रोका जाए, इस पर लगातार आपको आर्टिकल्स मिल रहे हैं क्योंकि अभी की एक बहुत बड़ी समस्या है, बहुत जबरदस्त समस्या है ना। तो इसके लिए लोग अपने अपने ढंग से उपाय बता रहे हैं और जो संस्थान हैं, सरकारें हैं, वो अपने अपने ढंग से उपाय भी कर रही हैं। अब धीरे धीरे इस बात की चर्चा होने लगी है कि ठीक है, जो संगठन है, संस्थाएं हैं, सरकार है, वो तो सब कर ही रही है, एनजीओस कर रहे हैं इसके लिए, लेकिन स्वयं कंपनियों को भी, यानी कि जो फैक्ट्री हैं, जो बड़े बड़े उद्योग हैं, उन्हें भी इस पर विचार करना चाहिए और बकायदे वो कर भी रहे हैं। तो इसको लेकर के यह आर्टिकल है और मुझे लगता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है क्योंकि मेंस में आप पाएंगे कि हमेशा जलवायु परिवर्तन को लेकर के एक न एक क्वेश्चन तो होता ही आपके जनरल स्टडीज के थर्ड पेपर में। तो इसे आप एक नए विचार के रूप में ले सकते हैं और जब आप इस आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको कुछ और भी दूसरी ऐसी बातें मिलेंगी जो एक प्रकार से इस टॉपिक पर दोहराने का काम करेंगी, आपका रिवीजन होता चला जाएगा। जैसे कि जब हम कहते हैं नेट जीरो, तो नेट जीरो का क्या मतलब होता है, ये आपको इसमें पढ़ने को मिल जाएगा और कुछ सर्वे की जो रिपोर्ट्स हैं वो आपको पढ़ने को मिल जाएंगी। तो मेरा सजेशन है कि यदि संभव हो सके तो प्लीज़ इसके जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उन्हें नोट भी कर लें और आप बिल्कुल मत सोचें कि अरे जब मेंस होगा तब देखा जाएगा। मान करके चलिए कि आप जो तैयारी कर रहे हैं वो मेंस के लिए ही कर रहे हैं, प्री की तैयारी तो हो जाती है, अपने आप हो जाती जब आप मेंस की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आता हूँ आज सीधे मुख्य विषय पर और मुख्य विषय के तहत मैं आपसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में कुछ बातें करने जा रहा हूँ। यह विषय मैंने क्यों चुना है मालूम होना चाहिए, क्योंकि देखिए जो सिविल सर्विस की तो तैयारी होती है, अगर आप कभी भी अपने एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लें तो ज़्यादातर क्वेश्चंस के बारे में आप अनुमान लगा सकते हैं या बता सकते हैं कि ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। सबके बारे में तो मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन के बारे में भले ही हम जाने या न जाने, लेकिन उसका संबंध या तो बहुत बड़ी घटना से होता है या आप ये कह लीजिए कि ऐसी सामान्य घटना से होती है उसका, या फिर यूं कह लीजिए कि उसका संबंध ऐसे सामान्य घटना से होता है जो हमारे ध्यान में नहीं होता लेकिन वो घटना घटित हुई होती है। इसीलिए मैंने कहा कि ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है मैं आपको बताना चाहूंगा। कल रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की घोषणा की, जो समीक्षा करती रहती है, दो दो महीने में घोषित करती है, उसके तहत आपने पढ़ा कि पांचवीं बार ये लगातार ऐसा हुआ है कि उसने नीतिगत दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दोस्तों इसके बारे में मैं इससे पहले काफ़ी बार बातें कर चुका हूँ इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। इसमें जो एक घोषणा की है रिजर्व बैंक ने, मैं खासकर उसके बारे में चर्चा करना चाहूंगा और वहीं से मैंने अपना आज का विषय भी उठाया है। उसने एक प्रोग्राम की घोषणा की है और उस प्रोग्राम का नाम है, देखिए ध्यान से सुनिएगा, उस प्रोग्राम का नाम है सेकेंडरी मार्केट, इंग्लिश में मैं बता रहा हूं, सेकेंडरी मार्केट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं द्वितीयक बाजार, सेकेंडरी मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्विजिशन प्रोग्राम, राइट। मतलब सेकेंडरी मार्केट को आप अलग कर दीजिए, क्या करने जा रही है वो सेकेंडरी मार्केट से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करने जा रही है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, यानी कि वो सेकेंडरी मार्केट से गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटीज होती हैं उनको एक्विजिशन करेगी, यानी कि उनको खरीदेगी, एक्वायर करेगी, लेगी। तो कैसे एक्वायर करेगी, सीधी सी बात है कि उनकी खरीदी करेगी, अब ऐसा नहीं कि जाकर के जब्त कर लेगी, ये उसका प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम की उसने घोषणा की है और इसके तहत उसने बताया है कि अप्रैल से लेकर के जून, ये जो तिमाही होती, 3 महीने का जो वक्त है, इस बीच में लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदे जाएंगे, रिजर्व बैंक खरीदेगी, राइट। अब वो क्यों खरीदेगी, क्या होगा, इसके बारे में हम अभी देखिए समय रहे तो चर्चा करेंगे, लेकिन आइए पहले मैं कुछ जो बहुत ही मूलभूत बातें हैं वो आपको बता दूं। देखिए, हम कहते हैं सिक्योरिटी मार्केट, एक तो मार्केट होता ही है, आप देख रहे हैं, आप सामान वगैरह खरीदते हैं, ये मार्केट है। जब हम इस लैंग्वेज में बात करते हैं, अर्थशास्त्र की भाषा में, तो एक कमोडिटी मार्केट होती है, शेयर मार्केट जैसे होता है, कमोडिटी मार्केट होती है ना, जिसमें गेहूं, चावल, दाल, सोना, चांदी, ये सब चीजें बिकती रहती है, खरीदी बिक्री होती रहती है। दूसरा होता है सिक्योरिटी मार्केट। जो सिक्योरिटी मार्केट है, जिसे हिंदी में प्रतिभूति बाजार भी कहते हैं, तो वो बेसिकली एक ऐसा बाजार होता है जहां पर शेयर की खरीदी बिक्री होती है, बॉन्ड्स की खरीदी बिक्री होती है, डिबेंचर्स वगैरह की खरीदी बिक्री होती है, इन सब की खरीदी बिक्री होती है। अब ये क्या हैं, क्या होते हैं, इनके बारे में बताने के लिए यहां वक्त नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनके बारे में मैं बताने लगूंगा तो फिर हमारा अपना विषय ही पूरा नहीं होगा और थोड़ा सा भटकाव भी हो जाएगा। जो आप स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज, वो जो स्टॉक एक्सचेंज है वह इसी तरह का एक बाजार है। स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी आप सुनते हैं, ब्रोकर्स सुनते हैं, इन सब को आप इस प्रतिभूति बाजार का घटक कह सकते हैं, फैक्टर्स हैं उसके, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। अब आप देखिए कि ये जो बॉन्ड है, डिबेंचर है, शेयर्स हैं, अब हम कह रहे हैं द्वितीयक बाजार, इसका मतलब है कि कोई प्राथमिक बाजार भी होगा या प्रथम बाजार होगा, तब इसका नाम हमने द्वितीयक बाजार कहा है, तो है। देखिए, जो प्रथम बाजार है वो क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी ने शेयर निकाले, आप देखिए अखबारों में छपते हैं, है ना, टीवी चैनल्स पर भी उनके बकायदे विज्ञापन आते हैं कि हमने ये इतने इतने के शेयर निकाले हैं, आप अप्लाई कीजिए, आप अप्लाई करते हैं और आपको शेयर मिल जाते हैं। तो अब आप देखिए कि आपने शेयर जो खरीदे हैं वो कहां से खरीदे हैं, सीधे कंपनी से खरीदे हैं, बॉन्ड आप सीधे सरकार से खरीद सकते हैं, राइट। तो जब आप सीधे उनसे खरीद रहे हैं तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी मार्केट, वो प्राथमिक बाजार है। अब ठीक है, अब आपने खरीद लिए, अब वो आपके पास आ गए, तो अब इसको आप बेचेंगे कहां, कंपनी को जाकर के नहीं बेचेंगे। या मान लीजिए कि आपने अप्लाई किया था और आपको लगता है कि ये शेयर बहुत ज्यादा प्रॉफिट का है, मुझे मिलना ही चाहिए, मैं इसे अपने पास रखना चाह रहा हूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपका नाम नहीं आया, आपको शेयर नहीं मिला, लेकिन आप रखना चाह रहे हैं, तो अब आप कहां से खरीदेंगे। तो दोस्तों, फिर आप सेकेंडरी मार्केट में जाते हैं, सेकेंडरी मार्केट में, इसे ही हम कहते हैं एक प्रकार का, जहां शेयर वगैरह की खरीदी बिक्री हो रही है, राइट। इस तरह से कह लीजिए कि जब आप अपनी वेजिटेबल्स सीधे किसान से खरीद रहे हैं तो आप प्राथमिक बाजार से खरीदे, सीधे किसान से ले रहे हैं, लेकिन जब आप बाजार वेजिटेबल्स मार्केट में जाकर के खरीद रहे हैं तो सेकेंडरी मार्केट से खरीद रहे हैं, एक समझने के लिए। तो अब देखिए कि आरबीआई ने क्या कहा है कि वो जो सरकारी बॉन्ड खरीदेगी, याद रखिए कि जो बॉन्ड होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, जिनका मैंने अभी नाम लिया है, ये प्राइवेट भी होते हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो भी अपने बॉन्ड, अपने डिबेंचर्स जारी करती हैं, और सरकार भी अपने बॉन्ड और डिबेंचर जारी करती है। अब आप कहेंगे कि भाई सरकार क्यों जारी करती है, उसको क्या जरूरत पड़ गई, सरकार भी करती है, सरकार इसलिए करती है कि समय समय पर उसे पैसों की जरूरत पड़ती रहती है। जैसे उदाहरण के लिए इस बार का बजट देखिए, सरकार ने बहुत ज्यादा घाटे का बजट दिया, अब उसको पैसा तो चाहिए, तो इस पैसे के लिए क्या करेगी, क्या इंतजाम करेगी, तो कहेगी कि ठीक है चलो कुछ हम अपनी प्रतिभूतियां सिक्योरिटीज जारी करते हैं, जैसे आप नाम सुनते होंगे ट्रेजरी बिल, ट्रेजरी नोट्स, ट्रेजरी बॉन्ड्स, कुछ समय पहले हम लोग म्यूनिसिपल बॉन्ड्स के बारे में बात कर रहे थे, तो वो म्यूनिसिपल जारी करती है, स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जारी करती है बॉन्ड। आप कुछ नहीं, आप समझ लीजिए कि एक सर्टिफिकेट है, आपको सर्टिफिकेट दे दिया गया है, जैसे आपको आपको 5,000 रुपये का बॉन्ड खरीदना है तो 5,000 रुपये का सर्टिफिकेट दे दिया गया है। कई तरह के होते हैं, उस पर हम लोग नहीं जाते, तो सरकार कहती है कि ठीक है आप 10 साल के बाद ले आना, तो इस 5,000 के बदले में हम 10,000 रुपये दे देंगे आपको, तो आप रख लेते हैं 5 साल, जब 10 साल जब पूरे हो जाते हैं तो आप सरकार को लौटा देते हैं, आपको 5,000 के बॉन्ड के बदले में 10,000 रुपये मिल जाते हैं। अलग अलग तरह के बॉन्ड होते हैं, कुछ में आपको सरकार हर महीने ब्याज देती रहती है, इस तरह से चलते रहते हैं, ठीक है। तो सरकार को पैसा मिल जाता है, फिर उस पैसे को रिपे अगर सरकार करती है तो देखिए धीरे धीरे करती है, तो अभी उसका काम चल जाता है, तो ये दुनिया में सभी जगह होता है। तो सरकार इस तरह के अपने बॉन्ड बेचती है। अब वो मार्केट में पहुंच गए बॉन्ड, ठीक है, मार्केट में पहुंच गए। देखिए होता क्या है कि जब सरकार बॉन्ड बेचने के लिए कर रही है तो वो मार्केट में है और वो मार्केट से लोगों के पास पहुंच गए। अब लोगों के पास बॉन्ड है, इस तरह से कह लीजिए कि लोगों के पास वो बॉन्ड है, ठीक है। लोगों के पास बॉन्ड है इसका मतलब ये है कि वो मार्केट में है, क्योंकि सरकार के पास अब नहीं है। आरबीआई ने कहा है कि हम बॉन्ड खरीदेंगे 1,00,000 करोड़ रुपए का। इसका मतलब क्या हुआ भाई, हम इसे समझते हैं। इसका मतलब है कि सर जब आरबीआई शुरू करेगी तो आपके पास मान लीजिए कि बॉन्ड है और आपको लगता है कि यार अब इसे बेच देना चाहिए, ठीक है, तो आरबीआई को आप बेच देंगे क्योंकि आरबीआई ने इसकी खरीदी शुरू कर दी है। आप अपना बॉन्ड बेच देंगे, सेकेंडरी मार्केट में ये काम होगा। तो जब आप बॉन्ड बेच देंगे, जैसे मान लीजिए कि 5,000 रुपए का बॉन्ड आपका था और अभी वो 7,500 रुपए में बिक रहा है, तो आप 7,500 रुपए में बेच देंगे, तो अब 7,500 रुपए आपके पास आ गए। अब इस 7,500 रुपए का आप क्या करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, चाहे भले ही आप फिर से इन्वेस्ट कर दें और खरीद लें, जो कुछ भी करें, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे। तो बेसिकली ये जो 1,00,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदने की जो आरबीआई ने घोषणा की है, इसका उद्देश्य केवल यह है कि जो हमारा मार्केट है, जो बाजार है, वहां धन उपलब्ध कराया जाए, उनको पैसा दे दिया जाए। देखिए जब हम कहते हैं मार्केट को पैसा दे दिया जाए तो लोगों को ही पैसा देने से उसका मतलब है। तो जब लोगों के पास पैसा आ जाएगा तो उस पैसे का वो कुछ करेंगे, करेंगे का मतलब है कि वस्तुओं की डिमांड जनरेट होगी। कोई सोचेगा कि यार चलो अब इतना पैसा आ गया है तो चलो मकान बनवा लेते हैं, कोई सोचेगा कि गाड़ी खरीद लेते हैं, कोई कुछ कुछ सोचेगा। तो इस तरीके से फिर जो डिमांड होगी मार्केट में वो जनरेट होगी, मांग उत्पन्न होगी, और जब मांग उत्पन्न होगी तो कम से कम आर्थिक गतिविधियां कुछ चलती रहेंगी। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये नीति इसलिए घोषित की है क्योंकि कोरोना के समय में हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से फिर से एक संकट की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। तो दोस्तों कुल मिलाकर के यही थोड़ी सी बातें थी फिलहाल के सरकारी प्रतिभूतियों के बारे में, और मुझे लगता है कि जो बातें मैंने बताई हैं इसे ध्यान में रख करके जब आप अब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो शायद अच्छी तरीके से यह टॉपिक आपके समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूं, और आज ईमेल लिखने वाले मित्रों में अमृत नारायण सतपति, अमृत नारायण जी आपको एकेडमी की पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और मैं अपनी ओर से आपकी सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से आपकी और बेहतर सफलताओं के लिए शुभकामनाएं करता हूं। अन्य मित्र हैं सौरभ गुप्ता पांडे गोपे झारखंड से और रवि अहिरवार गुना मध्य प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।